तफसीर देखेंगे आयत नंबर 83 से। अम्बिया कराम के तस्करे में अब जिस नबी का तस्करा है उनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बड़े ही प्यार और मोहब्बत से बयान किया गया और इतनी ही मोहब्बत से सुनने जाने के लायक है ये किस्सा। अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब को जब पुकारा उन्होंने अपने रब को कि मुझे पहुंची है सख्त तकलीफ़ और बेशक तू अरहमुर राहिमीन है। आगे कुछ भी नहीं कहा लेकिन पुकार में ये अंदाज था कि मेरे हाल पे रहम फरमा। फिर क्या हुआ, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिम व आतैनाहु अहलहू। तो हमने कबूल फरमाई उसकी फरियाद और हमने दूर फरमा दी जो तकलीफ इनको पहुंच रही थी और हमने अता किए उसे उसके घर वाले इतने और इनके साथ। कैसे, रहमतम मिन इंदीना बज़िक्रा लिल आबिदीन, अपनी ख़ास रहमत से। और ये नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा है, पीछे भी हम इनका किस्सा पढ़ चुके मुख्तसर अंदाज में। यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इनका तारुफ करवाया। अमूमन अंबिया कराम का जहाँ भी तस्करा होता है तो कहीं अब्दीना इबादीना और कहीं रसूल का नाम है, लेकिन यहाँ बराह रास्त लफ्ज़ व अय्यूबा और अय्यूब। ये कौन थे, क्या इनका ताल्लुक है, इसके बारे में बहुत सारी इख्तलाफी रिवायात हमें मिलती हैं। बनी इसराइली रिवायात में से देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें कुरान और सुन्नत से मैच करती भी नहीं दिखती, लेकिन इसके बरक्स अगर सही रिवायात को जमा किया जाए तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात हमें पता चलती है, आपका ज़माना 9 कबल मसीह था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 900 साल पहले या उसके इर्द गिर्द का था। रिवायात में आता है कि आप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे ईसो की नस्ल से थे। बहुत दौलतमंद थे, ज़रई ज़मीनें इतनी थीं कि आपके पास खेती बाड़ी के लिए तकरीबन बैलों की 500 जोड़ियाँ थीं और हज़ारों की तादाद में आपके पास भेड़ बकरियाँ थीं। 7 बेटे और 7 बेटियाँ थीं। इनकी बीवी का नाम जो बताया जाता है वो रहमत है, जो असल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे की बेटी थी, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती जो थी वो इनकी बीवी थी। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत हसीनो जमील थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया की हर नेमत अता फ़रमाई थी और दुनिया की नेमतों के साथ साथ दीन की नेमतें भी मौजूद थीं। माल दौलत औलाद बच्चे, ये वो चीज़ें होती हैं जो अमूमन लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और इस चीज़ से इंसान को हमेशा ही मोहब्बत होती है। इन सब का एक जगह जमा होना अमूमन इंसानों के अंदर सरकशी लाता है, लेकिन इतना कुछ पाने के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही साबिर थे। इनका किस्सा आगे सूरह स्वात में निस्बतन तफसील से आएगा, लेकिन जो बात हमें मिलती है वो क्या है कि अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई तो शैतान को बड़ा आर आया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी अच्छे इंसान की तारीफ़ हो। उसने कहा कि अल्लाह ताला ये क्यों नहीं सब्र करेंगे, शुक्र क्यों नहीं करेंगे, कमी किस बात की है, सभी कुछ तो है। तो अल्लाह ताला ने आजमाया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को और इस किस्म की वबा आई कि जिसमें इनके बच्चे भी मर गए। कुछ इस किस्म का मामला हुआ कि जिसकी वजह से इनकी फसलें तबाह हुईं। हर गम की खबर जब भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने इसको सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा। कहना आसान है लेकिन अल्लाह ना करे किसी पर पड़े तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह जो खुशी के वक्त में मुंह से निकलता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो किसी भी गम के वक्त में निकलता है। अल्लाह ताला ने कहा कि देखा, मैं ना कहता था कि मेरा अय्यूब बड़े सब्र वाला है, बड़े शुक्र वाला है। फिर शैतान को आ आई, उसने कहा क्यों ना सब्र करेगा, अभी खुद सेहतमंद है, और बच्चे पैदा हो जाएंगे और दौलत कमा लेगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पे आजमा लिया। कहते हैं कि इनके जिस्म के चंद अज़ा, जिसमें इनकी ज़ुबान कह लें जिससे ये बोल सकते थे, और कुछ ऐसे अज़ा के जिससे यानी इनकी सोच समझ कायम रहे, अल्लाह ताला ने इनको बीमारी में मुब्तला कर दिया। स्किन डिजीज़ भी थी जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि तकलीफ़ होती है बल्कि इंसान दूसरों की नज़रों में थोड़ा सा काबिले रहम हो जाता है, कोढ़ का मर्ज़ कह लें अपनी तौर पे आप। लोगों ने इनको पकड़ कर कचरे के ढेर पे फेंक दिया। लोगों का यही हाल होता है जब आप उनके काम के नहीं रहते ना, तो खुद ही लोग आपको मनोमट्टी में फेंक आते हैं, और जब किसी की वजह से वैसे किसी को आ रहा है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। सिर्फ इनकी बीवी इनके साथ रही जो मेहनत मजदूरी करती और कमा के लाती और इनका ख्याल रखती। तकरीबन 18 साल तक की रिवायतें आती हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी तकलीफ़ में मुब्तला रहे। बाज़ दफ़ा बीवी कहती भी कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। और हकीकत है कि दुआ मांगने में और सेहत मांगने में कोई गुनाह नहीं बल्कि ये ऐन सुन्नत है, बल्कि बाज़ औक़ात तो लाजिम हो जाता है कि इंसान अल्लाह ताला से मांगे। लेकिन असल में बाज़ दफ़ा जब इंसान अल्लाह ताला के साथ कुर्ब के उन दर्जों पर पहुँच जाता है कि जहाँ खुशियों की तरह गम भी अच्छे लगते हैं ना, तो यकीन करें बंदे का दिल ही नहीं चाहता कि उसका गम दूर हो। ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है, हर एक इस बात को अपने ऊपर ना ले, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि बंदा अल्लाह के तरफ से दिए हुए गम, अल्लाह की तरफ से आई हुई बीमारी परेशानी दुख को भी इतना प्यारा महसूस करता है कि वो कहता है कि मैं इसमें ही खुश हूँ। जैसे एक वाक्य मैंने किसी स्पीकर से सुना, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, कि एक शख्स बहुत नेक था, इंतहाई जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको देखकर अल्लाह ताला याद आए, लेकिन आंखें नहीं थी, नाबीना हो गए। तो किसी ने उनको कहा कि तुम अल्लाह से मांग लो, अल्लाह दे देगा, अल्लाह ताला तो दुआएं कबूल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा तो मुझे ज़रूर देगा, लेकिन कदरुल्लाही अहब इलैया मिन बसरी, मुझे अल्लाह की तकदीर अपनी आँखों से ज़्यादा प्यारी है। यानी अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला कि मेरी आँखें जाएँ, ये मुझे अपनी आँखों से ज़्यादा प्यारा है। तो ये दर्जा सब्र का आखिरी दर्जा होता है जो आखिर में शुक्र में ढल जाता है। सब्र और शुक्र बाद में मर्ज होके एक ही चीज़ बन जाते हैं, इसीलिए इन दो चीज़ों को जन्नत का रास्ता कहा गया है। मुझे तो ऐसी लगता है कि हज़रत अय्यूब पर भी यही कैफियत थी, वरना बाज़ लोग इससे गलत भी मियान ले लेते हैं कि क्या फिर इस्लाम दवाई लेने को मना करता है, क्या इस्लाम दवा खाने से मना करता है या दुआ खाने से मना करता है। तो ये बातें ज़रा आगे की हैं जो हम में से हर एक को समझ नहीं आ सकती। लेकिन बहरहाल एक ऐसा वक्त भी आया कि लोगों ने इनको ये ताना देना शुरू कर दिया कि यकीनन इसने कोई बहुत ही बड़ा पाप किया है, कोई बड़ा ही गुनाह किया है जिसकी पकड़ में अल्लाह ने इसको पकड़ा है। और होता भी ऐसे ही है, बाज़ दफ़ा लोग दुनिया में किसी मुसीबत में मुब्तला देखकर किसी शख्स को फौरन जजमेंटल होते हैं, कहते हैं इसकी पकड़ है कोई, और अपने पे आ जाए तो कहते हैं मेरी तो आजमाइश है। अब जब बात इनके और अल्लाह ताला के ताल्लुक पे पड़ी, ये इनसे बर्दाश्त ना हो सका। फिर इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, कुछ नहीं मांगा बल्कि वह अय्यूब इस नादा। देखिए बराह रास्त अल्लाह ताला ने इनकी दुआ का जिक्र किया है, जब उसने पुकारा रब्बहु अपने रब को, ये लफ्ज़ इनके नहीं है। अगर कभी भी आप ये दुआ याद करें तो दुआ असल में शुरू होती है अन्नी से। पहला जो लफ्ज़ है ना रब्बहु, ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हज़रत अय्यूब ने किसको पुकारा, अपने रब को पुकारा, किसी और को नहीं पुकारा, किसी पीर फकीर का दामन नहीं पकड़ा, किसी दूसरे को बीच में वसीला और वास्ता नहीं बनाया, बल्कि अपने रब को पुकारा। पुकार क्या थी, अन्नी मस्सनिय दुर्रु, बेशक लगी है मुझको ज़रर। बस ये नहीं कहा कि इसको दूर कर दे, अपनी हालत का तذکرہ कर दिया। ये भी एक आला मुकाम बंदगी होता है। बंदा कहता है मैं मुंह से क्या कहूँ, उसको तो सब पता है। और ये भी बड़े आला दर्जों की बातें हैं कि मैं बस रब को ये बता देता हूँ कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ लगी है। माँ और बच्चे की मिसाल सिर्फ समझने के लिए अगर ले लें कि बच्चा सिर्फ माँ को ये बताता है कि अम्मी चोट लगी है, लेकिन उसको यकीन होता है कि ये बात सुन के माँ तड़प उठेगी। वो ये नहीं कहता अम्मी पट्टी बांध दो, क्योंकि उसको पता है कि माँ ने फौरन पट्टी बांधनी है, बल्कि माँ तो फिर इतना कुछ करने लग जाएगी कि बाज दफा बच्चा खुद ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, यही कैफियत है कि अन्नी मस्सनी यद्दुरु, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, मैं हर हाल में खुश रहने वाला बंदा, बस मुझे जरूरत पहुंच गई है, तकलीफ पहुंची है, और मेरा ईमान तेरे बारे में क्या है कि वअंता अरहमुर राहिमीन, बेशक तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। ये भी नहीं कहा कि अरहमनी या इरहमनी, मुझ पे रहम फरमा, क्योंकि उनको पता था कि जब अल्लाह को अरहमुर राहिमीन कहता है इंसान, तो अल्लाह की रहमत और जोश में आती है। किसी को कहने में तो एक किस्म का ऑर्डर या इल्तिजा होती है, इन्होंने वो कैफियत नहीं बनाई, बल्कि कहा कि अल्लाह बस मुझे पता है कि तू रहम वाला है। इसमें एक खामोश सा इशारा भी है, और वो क्या कि मैं तो नहीं कहता कि सेहत मिलेगी तभी तू रहमान है। मेरा ईमान है कि इस वक्त मुझ पे जो बीमारी आई है ना, ये भी तेरे रहम का तकाजा है। और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने के कई मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। हम समझते हैं कि बीमारियां आ गईं, परेशानियां आ गईं, दुख मिल गए, तो गोया के नऊज़ु बिल्ला अल्लाह ताला बेरहम है। आज कुछ लोग जो ज़्यादा ही मरूब है गैरों से, वो ये बात कहते हैं कि नऊज़ु बिल्ला खुदा इतना बेरहम है कि दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं और वो कहता है कि मैं रहम वाला हूँ, और दुनिया में बीमारियां हैं और सैलाब हैं और कहत हैं। तो आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझिएगा। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, माँ उसे मोहब्बत करती है ना, फिर डॉक्टर कहता है कि इसको इंजेक्शन लगवाओ। किस चीज़ का इंजेक्शन है? जो इसको प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से। वैक्सीनेशन ले लें, पोलियो का ले लें, कोई और भी जो बच्चों को लगते हैं आगाज़ में। बस दफ़ा बच्चे को माँ इंजेक्शन लगवाती है बीमारी से बचने का, और उसी इंजेक्शन के रिएक्शन में बच्चे को बुखार हो जाता है। कोई उस वक्त पूछे उस बच्चे से कि बता तेरी माँ कैसी है, वो कहेगा बड़ी बेरहम माँ है। अच्छा भला लेटा हुआ था, पहले इंजेक्शन लगवाया, उसकी तकलीफ थी, और अब उस पे बुखार हो गया। तो उस बच्चे को नहीं समझ आएगा ना कि ये चंद घंटों का बुखार उसको बाद में सारी ज़िंदगी के लिए किसी एक बीमारी से महफूज कर सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, हमारी ज़िंदगी में जो भी मामलात आते हैं ना, ये इंजेक्शंस या बुखार से भड़के नहीं हैं। अल्लाह ताला इसके बदले में बहुत बड़ी खैर लेके आता है। असल में दुआ ये करने की ज़रूरत है कि अल्लाह वो नज़र दे जो तेरे फ़ैसलों की हिकमत को समझ सके। करके देखिए, घुटनों घुटनों तकलीफ़ों, बीमारियों, परेशानियों में मुब्तला होंगे ना, लेकिन आपका दिल बिलियों उछल रहा होगा। खुशियाँ आपके अंदर होंगी कि मेरे साथ मेरे रब का मामला कभी भी खराबी का नहीं होता। इतना यकीन था, इतने प्यार से दुआ मांगी, बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत अय्यूब तो अल्लाह ताला से ये तक कहा करते थे कि अल्लाह तू जानता है कि तूने मुझे कितना कुछ दिया हुआ था, और मेरा नरम गरम बिस्तर तैयार रहता था, लेकिन मेरा दिल तेरी याद में अटका होता था। मैं उस बिस्तर को छोड़कर तेरे से मुलाकात के लिए खड़ा होता था, लेकिन फिर भी बीच में कितनी फिक्रें थी, माल की, घर की। अब तो मैं ज़्यादा खुश हूँ कि तूने मेरे दिल को सारी फिक्रों से आज़ाद कर दिया। ये है सब्र के आला दर्जे, इसलिए नाम आते हैं अय्यूब के, सब्र का मिसल। इतनी अल्लाह ताला के आगे जब खुद सपुर्दगी की कैफियत होगी, तो अल्लाह की कैफियत क्या होगी? फस्तजब ना लहू, फिर अल्लाह कबूल कर लेता है। याद रखिए कि हमारे यहाँ दुआ का एक बड़ा ड्रामेटिक किस्म का कॉन्सेप्ट है। हाथ उठाओ, यहाँ तक उठाओ, सीधे रखो, बीच में बे मिल जाए, फिर यूं कर लो, बीच में गैप नहीं रखना, नहीं तो दुआ गिर जाएगी। बड़ी अहम दुआ है तो उसको हाथों को उल्टा के मांगो। ये हमारी बात है। याद रखिए कि जब बंदे के दिल पे चोट पड़ती है ना, तो सिर्फ जुबान नहीं बोलती, सारा जिस्म जुबान बन के अंग अंग से दुआएं निकलती हैं। करवटों पे दुआएं होती हैं, लेटे हुए दुआएं होती हैं, दिल की हर धड़कन में वो दुआ होती है जो गम दिल को लगा होता है। अल्लाह ताला के साथ कोई बाजारी ताल्लुक नहीं है एक ईमान वाले का। हाँ, हम मांगते भी हैं, मांगना भी चाहिए, कभी अकेले मांगे, कभी सबके साथ मिलके मांगे, कभी चुपके चुपके मांगे, कभी ऊंची आवाज़ में मांगे, लेकिन ये मत सोचिए कि इसी तरह मांगा है तो मांगा है। आप दिल में कोई तलब रख के अल्लाह का कलाम पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, अल्लाह ताला उसको भी कबूल कर लेता है। वरना तो ऐसे लगेगा कि अल्लाह सिर्फ सुनता है, जानता नहीं है। خیر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فاستجبنا لہو، ہم نے قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے دور کر دیا جو کچھ بھی ضرر تھا اس کے ساتھ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف کا نام نہیں لیا، بس جو ضرر تھا نا وہ ہم نے دور کر دیا. اور ماں جو ہے نا یہ کامن چیز کے لیے آتا ہے، نکرہ کے لیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاندار اور بے جان سب کے لیے آتا ہے. اس کے اپوزٹ جو من کا لفظ ہوتا ہے یہ صرف جاندار کے لیے آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کی اذیت جسمانی ہی نہیں، روحانی، نفسیاتی، سائیکلوجیکل جو ڈپریشن تھا سارے ہی دور کر دیا. دنیا میں بعض دفعہ ظاہری طور پہ جسمانی مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چوٹ پڑ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مینٹلی لوگوں سے پیچھے سمجھتے ہیں، ساری زندگی ناسور بن جاتی ہے، احساس محرومی کا شکار ہے. کہانی ماں بہ من ضرن، اس کی سکن بھی پاک، اس کا دل بھی پاک، اس کی زبان بھی پاک، یعنی ایسے پاک کیا ہم نے کہ لگتا تھا کہ کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کسی کے ضرر اور اللہ کسی کے دکھ دور کرتا ہے نا، اس طرح سے دور کرتا ہے لگتا ہے کبھی یہاں زخم آیا ہی نہیں تھا. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے غموں پہ پاہے رکھے، اللہ ہمارے زخموں کو بھرے، اللہ ہماری مجبوریوں کو دور کرے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. اس طرح سے کر دیتا ہے جیسے سٹین لیس. پہلے دور میں لوگ جب آپریشن کرتے تھے تو کٹ لگاتے تھے اور پھر کٹ کے نشان ہوتے تھے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹانکے لگے. کسی کا آج سے 20 سال پہلے آپریشن ہوا ہوگا نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی اس کے اس طرح سے کٹ کٹ کے نشان ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ایک اور ٹیکنیک آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ برے لگتے ہیں، گم سلائی کرتے ہیں جس کو. میں نے کسی کا دیکھا تو جیسے چھوٹی سی چھلی سی بنی ہوتی ہے، تو کہا ٹانکے کدھر ہے، تو کہا گیا کہ اب نئی ٹیکنیک آئی ہے، اندر کٹ لگاتے ہیں، اندر سے بل دیتے ہیں تو جیسے باہر ایک ڈوری سی لگتی ہے. آج ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ کچھ اور بھی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں نشان رہ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے جب اللہ زخم بھرتا ہے نا، نشان بھی نہیں رہتا، بلکہ انسان پہلے سے زیادہ نکھر جاتا ہے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے اس کے ساتھ ان کے گھر والے اور بھی دے دیے. اس کے بارے میں دو روایتیں، بعض کہتے ہیں کہ پہلے ہی بچے زندہ ہو گئے اور اتنے اور بھی ہو گئے، یعنی 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اگر پہلے تھیں، اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور 7 اور بھی دے دیے. بعض یہ بھی روایتیں آتی ہیں، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، نبیوں کے ساتھ ہمیشہ معجزات ہوتے ہیں. دوسری ایک روایت ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے تھے لیکن اللہ نے بعد میں 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں اور دے دی. ہم دونوں کو ہی مانتے ہیں، ہمیں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ سب ہوا کیسے؟ رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. رحمت اس وقت بھی تھی جب ضرر لگا تھا، لیکن جب ضرر ختم ہوتا ہے نا، وہ رحمت تو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اچھل اچھل جاتا ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں دیکھو میرے ساتھ میرے رب نے کتنا پیارا معاملہ کیا، کتنا حسین معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کہ مجھے اتنا کچھ دیا. کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی کہ 4 نسلیں انہوں نے دیکھیں. بعض کہتے ہیں یہ مثلہ معہم میں بیٹوں کے ساتھ، پھر پوتے بیٹیوں کے ساتھ، نواسے نواسیاں بھی آتی ہیں، لمبی عمر پاتے گئے اور 140 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور اس سارے دور میں ان کو وہ سب کچھ مل گیا جو ملنا تھا. اور یہ سب کچھ ملنے اور پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو اس واقعے سے سبق دیا وہ کیا ہے؟ وذکرٰ للعابدین، اور نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے عبادت گزاروں کے لیے. جو جتنی عبادت کرے گا اتنی اس کو نصیحت ملے گی. یہاں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اگر ہم پچھلے ٹاپک کو کلوز کریں ایک حدیث کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، تکلیفوں اور آزمائشوں کے اعتبار سے سب سے شدید لوگ نبی ہوتے ہیں. ثم الصالحون، پھر صالح لوگ. ثم الامثل فالامثل، پھر اسی کے مثل اسی کے مثل. یعنی اگر اتنی تکلیفیں آئیں تو غم نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا، یہ اللہ کے پاس اس کے کیا درجے ہیں، اس کی ایک دنیا میں نقش نشانی ہوتی ہے. جو ایمان کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اس پہ اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ 4 بچے ہیں ایک عورت کے، हर बच्चे से उसको मोहब्बत है, हकीकत इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ को अपने चारों बच्चों की कैपेसिटी खूब अच्छी तरह पता होती है कि मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, कितना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। जो बच्चा कमज़ोर होता है माँ उस पर डालती थोड़ा काम है, और जो ज़रा सेहतमंद है, अच्छा खाता पीता है, माँ उसको भारी काम दे देती है। तो माँ को पता होता है ना कि मेरा कौन सा बच्चा कितना बर्दाश्त करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला को भी पता होता है कि किसका ईमान कितना है। जैसे माँ चाहती है ना बच्चे का जिस्म ठीक रहे, इस तरह अल्लाह ताला चाहता है कि इंसानों के ईमान मजबूत रहें। अल्लाह हमारे ईमान का दुश्मन नहीं है, जान के हम पे ऐसी चोटें नहीं डालता कि हम ईमान से महरूम हों, वो तो ईमान देता है। फिर जितना जिसमें ईमान होता है उसको रख के प्रेशर डाल के चेक करता है कि वो कितना है, और जिससे जितनी मोहब्बत होती है ना उसको याद बंदा ज़्यादा ही करता है। बस बच्चे हैं वो कहते हैं अम्मी आप हर काम पे मुझे ही क्यों बुलाती हैं, जो भी चीज़ होती है मुझे बुलाती हैं, आप दूसरी बहन को क्यों नहीं कहती। तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि मेरे दिल में तुम रहती हो, मेरी ज़ुबान पे तुम्हारा ही नाम आता है। इसी तरह जो लोग अल्लाह के कुर्ब में होते हैं ना अल्लाह उनको ज़्यादा याद रखता है। रिवायात में आता है कि सहाबा कराम पे 40 दिन तक अगर कोई तकलीफ कोई मुसीबत ना आती, यानी बड़े फन में और बड़े ग्लैमरस और रिलैक्सेशन में वक्त गुजर जाता तो गम लग जाता उनको। कहते कि हमारे रब ने हमें याद नहीं किया, वो हमें याद नहीं करा। आप देखिए कि इस्लाम ने तकलीफ बीमारी गम को कैसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया। हम कहते हैं हर वक्त अपने आप को इंश्योर्ड कराए रखें ताकि बीमार ना हो। बीमारी बज़ाहर अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन इस्लाम ने उसको कितना ग्लैमरस कर दिया कि ला बासतहुरु इंशाल्लाह, ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों से तुमको पाक करेगी। अब आप कहते हैं कि मैंने बीमार होना ही कोई नहीं, पहले से दवाई खा लूँ, पहले से सब कुछ कर लूँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन बीमारी में भी खैर है, बीमारी में भी रहमत है। दूसरी चीज़ यहाँ से अब हम देखेंगे आबेदीन के लिए ज़िक्रा कैसे है ये वाक़या। पहली बात देखिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे थे, साबिर थे, शाकिर थे, तहज्जुद गुजार थे, सब कुछ थे, फिर भी मुसीबत आई। क्या पता चली बात कि ज़रूरी नहीं कि आप इबादत गुजार बने और आपके ऊपर रहमतें शुरू हो जाएं, आसानियां शुरू हो जाएं। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है और बाज़ दफ़ा माएँ इसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बचपन से बच्चे की ट्रेनिंग क्या करती हैं, नमाज़ पढ़ लो फिर बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं ना तो थोड़ा सा सदका करके जाओ। यानी बचपन से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि तुम अगर इबादत करोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई फ़ायदा मिलेगा। कभी भी ऐसा ना करें, यकीन करें आप उनके ईमान को रिस्क पर रख देंगे। अगर ना आए तो क्या होगा, आइंदा नमाजें छोड़ देंगे। आप बच्चे को कहते हैं कि रात को नफिल पढ़ के सो जाओ, कल पेपर बहुत अच्छा होगा, बिलफर्ज कल पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो ना चाहते हुए भी सोचेगा कि अल्लाह ने मेरी इबादत के बावजूद मुझे नहीं दिया। आप कहते हैं बेटी को, बेटी हिजाब कर लो, देखना बहुत जल्दी रिश्ता आ जाएगा, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। कभी इबादत को दुनिया समेटने का ज़रिया ना बनाए, वो अपनी शान से अपनी करीमी से कर दे तो कर दे, हम नहीं कह सकते किसी को। ये पहली बात है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है ना कि दुनिया की दौलत या मिलेगी या दीन की दौलत मिलेगी, ये भी एक किस्म की मिसकॉन्सेप्शन है। हज़रत अय्यूब के किस्से से हमें एक दूसरा जो मिलता सबक वो क्या है कि दुनिया और दीन की नेमतें एक इंसान में जमा हो जाएं, इससे उसके दर्जों में कमी नहीं आती। न जाने कब से ये कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में शुरू हो गया कि या दीन होगा या दुनिया होगी, और जहाँ दुनिया देखी कहते हैं होगा हराम का माल, ऐसे खाते होंगे, ऐसे ऐसे स्मगलिंग करते होंगे तभी तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, और जहाँ दीन को देखते हैं, दीन वाले के पास पैसा देखते हैं, कहते हैं खाते होंगे लोगों से माल लेके, करते होंगे डोनेशंस में से कोई कमी बेशी इधर उधर। पता नहीं क्यों हम ये कॉन्सेप्ट ले ही नहीं पाते कि किसी को दीन के साथ साथ दुनिया की भी नेमतें मिल सकती हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। आप इमेजिन करें कि किसी के दो बच्चे हैं, आप अपने ही ले लें, अल्लाह आपके दो बेटे देता है आपको, एक बेटा आपका है दीन का बेटा और एक दुनिया है, तो क्या दो बेटे होना बुरी बात है? क्या अगर आपको पहला बेटा दुनिया का मिला था तो क्या दूसरा दीन का नहीं मिल सकता? किसी का पहला बेटा दीन का होता है, किसी का दूसरा बेटा दीन का होता है। कोई दीन में आने से पहले बड़ा दौलतमंद होता है और बाज दीन में आके फिर दौलतमंद होते हैं, तो क्या आप दोनों में से एक बेटे को मारेंगे कि नहीं भाई नहीं, तुम दूसरे के साथ नहीं रह सकते? चले दो आंखों की मिसाल ले लें। आपकी एक आंख जो है ये आपका दीन है, दीन की दौलत है, और दूसरी आंख आपकी दुनिया की दौलत है। असल खराबी ना तो दुनिया में है ना दीन में, असल खराबी ये कि आप दीन लेके क्या करते हैं, वो दीन बदतरीन दीन बन जाता है जिससे आप फितने फैलाएं, जिससे आप लोगों के अंदर अपनी धाक बटाएं और आप तकब्बुर का शिकार हुए रहें, और वो दुनिया आपके लिए बहुत बड़ा फितना है जिस दुनिया की वजह से आप दुनिया में शर और फसाद करें। दोनों दो छुरियां हैं, जिसका जो इस्तेमाल करेंगे वही मिलेगा। आप दीन के साथ आजिज़ बने, लोगों से प्यार करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, फ़राइज़ को अदा करें, फिर मामलात को देखें, आपके लिए दीन खैर ही खैर है। इसी तरह आपको अल्लाह ने दुनिया दी, आप हक वालों के हक दें, ज़कात दें, अपने मामलात को संवारें, अपने आप को आसाइश में रखें, कोई हरज की बात नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सोने की टिड्डियाँ बरसी थी, बुखारी की रिवायत है। लुकस बोलते हैं ना टिड्डियों को, छोटी छोटी जैसे पत्रियों की तरह। कहते कि जब ये सेहतमंद हुए, अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल सेहतमंद कर दिया, तो फिर उसके बाद इनके ऊपर सोने की टिड्डियाँ बरसी, तो दोनों हाथों से लेने लगे। तो अल्लाह ताला ने आवाज़ लगाई है, अय्यूब क्या मैंने तुझे इन चीज़ों से बेनियाज नहीं किया? तो कहा अल्लाह वो बेनियाजी अपनी जगह, लेकिन मैं तेरी खैर समेटूंगा। और इन्होंने अपनी जैसे कहते हैं ना झोली भर के वो सोने की टिड्डियाँ ली। अल्लाह ताला कहते हैं आते ना हो अखलाहू व मिसलहू माहुम। और एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, इसी तनाजर में जहाँ सच्चा दीन होगा वहाँ कभी माल की तंगी नहीं होगी। आप कोई मस्जिद चला रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप ज़ाती तौर पे कोई एक फ़ंड जमा करते हैं कि चलो मैं थोड़े से सोशल वर्क कर लूँ, कहीं चंदा जमा करूँ, जहाँ तक आपकी नीयत सही रहेगी, आपके अंदर इखलास होगा, कभी कमी नहीं होगी। जहाँ भी आप कहना कि अब डाउनफॉल शुरू हो गया, कहीं ना कहीं नीयत की खराबी होगी। आजमा के देख लें, बंदा पाँव पसारे उतने जितनी उसकी चादर है, आप फील करेंगे कि अल्लाह सच्चा दीन देगा आपको इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी रही, अगले कोर्स में आपको कुछ मुहद्दिसीन की, कुछ आइमा किराम की सवाने उम्री पढ़ाएंगे। इतना माल था इनके पास, जिनको आज हम दीन के बड़े बड़े मीनार समझते हैं ना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम मुस्लिम, आप देखें कि इतनी दौलत इनके पास कि समेटने तो इनको वक्त नहीं मिलता। फ़र्क क्या होता है कि बंदा मोमिन के दिल में नहीं होती, हाथों में होती है दौलत, उसके हाथ में या दूसरे के लिए होती है। तो यहाँ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में से हम सब अपने लिए भी अमल की यही सारी बातें ले सकते हैं कि अगर कभी कोई तकलीफ़ आ जाए गम ना करें। वक्ती तौर पे अल्लाह अपने बड़े चुने हुए बंदों को भी बहुत ज़्यादा पीछे डालता है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सूरत स्वाद के अंदर जाके कि वहाँ तो फिर अल्लाह ताला ने एक चश्मा निकाल दिया था, कहा इसका पानी पियो भी और इसके पानी को अपने ज़ख्मों पे भी लगा दो, और स्किन भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हुई। कहते हैं कि जब बीवी घर में आई तो वो बूढ़ा शख्स है ही नहीं, बीमारियों से अटा हुआ, देखा कि एक जवान शख्स बैठा हुआ है। तो फौरन उन्होंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, कहा पता नहीं यहाँ भाई कोई एक बूढ़ा शख्स था। कहा वो मैं ही हूँ। जब देखा तो वह अय्यूब अलैहिस्सलाम थे। यकीन करें अल्लाह आपकी उम्र भी वापस कर देता है। आप जवानी में दीन का काम शुरू कर दें, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रह के देखिए, अल्लाह आपके वो साल महीने जो बीमारियों तकलीफ़ों या दुखों में कटते हैं ना, वो सारे के सारे पलटा देता है कि लो पकड़ो अब एक नई ज़िंदगी शुरू करो। वज़िक्रा लिल आबिदीन, असल बात ये कि बंदगी करने वालों के लिए नसीहत है। अब हमने तो इतने प्यार से हज़रत अय्यूब का ज़िक्र सुना, और मैं तो जब भी पढ़ती हूँ मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने आज पहली दफ़ा पढ़ा है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़दह बात भी करूँगी सिर्फ़ एक तकाबुल के लिए कि कुरान किन लफ्ज़ों में इस्तेमाल करता है हज़रत अय्यूब का नाम, क्या तारुफ है। इसके बरक्स अगर आज की बाइबल को खोलें तो वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी तकलीफ़दह बातें करते हैं। चंद कोटेशंस आपके सामने रखती हूँ, बात खुद ही खुल जाएगी। सहीफ़ा अय्यूब बाब 3 में लिखते हैं, इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की, और अय्यूब कहने लगा बूदहू जिस दिन मैं पैदा हुआ, यानी लानत हो उस दिन पर जिसमें मैं पैदा हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। फिर एक और आयत, आयत 1 से 4, 7, 9 में लिखा हुआ है, वो दिन अंधेरा हो जाए, वो रात भांच हो जाए, इसमें खुशी की कोई सदा ना आए, इसकी शाम के तारे तारीख हो जाएं, यानी लानत कर रहे हैं अपने पैदा होने पे। फिर वो अपनी पैदाइश पर नफरत भेजते हुए कहता है इसी बाब की अगली आयतों में, मैं रहम में ही क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी, या पोशीदा असकाते हमल की मानित में वजूद में क्यों ना आया, यानी मेरी माँ का मिसकैरेज ही हो चुका होता, या उन बच्चों की मानित जिन्होंने रोशनी ही ना देखी, ये बाब 3 आयत 11 और 16। इसी पर बस नहीं बल्कि वो अपने खुदा से सिर्फ शिकवा करता हुआ नहीं उलझता हुआ और झगड़ता हुआ सुनाई देता है। इसी के बाब 7 आयत 20 से 21 में आता है, ए बनी आदम के नाजिर यानी अल्लाह ताला, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हो जाऊँ, तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ़ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर करता। बाब 10 में आता है, अय्यूब अपने रब से कहते हुए सुनाई देते हैं, मेरी रूह मेरी ज़िंदगी से बेजार है, मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूँगा, मैं अपने दिल की तलखी में बोलूँगा, मैं खुदा से कहूँगा मुझे मुलजिम न ठहराओ, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है, क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे तू मेरे खिलाफ यानी तू मुझ पर जुल्म करे, नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है, बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों, मैं जान दे देता और कोई आंख मुझे न देख पाती, मैं ऐसा होता गोया के था ही नहीं। ये भी बाब अय्यूब इसकी आयतें 1-2 से आगे की हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि एक तरफ अल्लाह ताला कह रहे जिक्र लेल आबेदीन, क्या ये झलक मिलती है इन बातों में। इसी से आप देखिए कि जिन कौमों ने नबियों के बारे में ये कुछ बोल दिया तो फिर उनके पैगाम में कितना खलल होगा। आप एक बात ज़रूर सोचेंगे कि आखिर नबियों को क्यों प्लूट करते थे, जहन में आता है ना, इससे इनको क्या मिलता है। चले भाई सूद को हलाल कर लिया, इसमें नफ्स का फ़ायदा है, शराब हलाल कर ली फ़ायदा है, आखिर नबियों के बारे में ऐसी कहानियाँ क्यों आते हैं जहन में सवाल, तो फिर जवाब दूँ। तो इसका जवाब सुन लीजिए कि गुजरते हुए वक्त के साथ जब इनके रिब्बी और इनके प्रीस्ट और इनके मौलवी जो थे उनके अंदर खराबियां शुरू हो गई ना, तो उन्होंने अपने से तवज्जो लोगों की पलटाने के लिए नबियों की हालात बदल दिए, ताकि लोग ये कहें कि नबी ऐसे थे तो फिर ये तो फिर भी कम दर्जे के, यानी अपनी जात के दिफा में नबियों पर कीचड़ उछाल दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ऐसे बुरे जहन वाला होने से बचा के रखे।